मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों नमस्कार। आज 3 जुलाई 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल अपने सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 28 फरवरी 2016 से शुरू होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं संकल्प मेश्राम, आप बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं, सौरभ सिंह दिल्ली से हैं और सोमेन प्रसाद बैरकपुर पश्चिम बंगाल से हैं। संकल्प, सौरभ और सोमेन, मैं आप तीनों साथियों का एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूं, या यूं कह लीजिए कि आपको सलाह भी देता हूं कि मन में जरा सी भी ये भावना ना लाएं कि अभी तो फरवरी बहुत दूर है, एंजॉय किया जाए। एंजॉय कीजिए, एंजॉय करने के आधार बदल दीजिए और उसमें एक आधार आपका होना चाहिए डेली ऑडियो गाइडेंस। डेली ऑडियो गाइडेंस के साथ आप डेली एंजॉय करने की आनंद आदत बना लीजिए। आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आप में एक परिवर्तन आता जा रहा है। आप अपने आप में एक अलग ही तरह की कैपेसिटी और कॉन्फिडेंस महसूस करने लगे हैं। और डेफिनेटली तब जब आप यहाँ क्लास में आएंगे तब आप में इतना बदलाव आ चुका होगा कि आप यहाँ की क्लास का अधिक से अधिक फायदा उठा सकेंगे। और यह बात मैं केवल अपने इन 3 साथियों के लिए ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि उन सभी साथियों के लिए कह रहा हूँ जो अभी अक्टूबर के बैच में आने वाले हैं और साथ ही जो फरवरी के लिए भी इससे पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो मित्रों, इसी स्वागत के साथ ही मैं आज बधाई देना चाहूँगा मिस्टर प्रबोध को जो उड़ीसा से हैं और सेकेंड बैच के यहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि सर, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट मुझे आपको यह सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा सिलेक्शन इंटरनेशनल स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स के लिए हो गया है और मेरी सैलरी भी अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जो विश्वास से परे है या जितना ये सोच नहीं रहे थे उससे भी अधिक है। और स्पेशली इन माय वाइवा योर गाइडेंस हेल्प मी ए लॉट, 100% ऑफ द क्रेडिट ऑफ माय सक्सेस गोज टू यू सर। थैंक यू सर। प्रबोध, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, खासकर इस मेल के द्वारा सूचित करने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से तुमको बहुत बहुत बधाई और हम सब की तरफ से, सेकेंड बैच के सभी स्टूडेंट की तरफ से और इस ऑडियो गाइडेंस के सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने इस काम में सफल हों, इस काम को एंजॉय करें, इस काम की ऊंचाइयों तक पहुंचें और बड़ी हंसी खुशी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हम सबकी शुभकामनाएं और आपके विकास और उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं भी। मित्रों, आज कुछ छोटी छोटी सूचनाएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन मैं कुछ बातें आपको याद दिलाता हूं, हालांकि वो पुरानी ही बातें होती हैं। पहली बात तो यह है कि सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो नहीं आएगा, लेकिन सैटरडे को आपको जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स होती हैं एज यूजुअल वो मिलती रहेंगी। लेकिन जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं उनको, उनके पास उनके मेल पर स्पेशल ऑडियो भेजा जाएगा। प्लीज वो अपने मेल को एक्सेस कर लें। और जो विषय रखा गया है इस बार स्पेशल ऑडियो का, वो रखा गया है मुद्रा बैंक। ये विषय मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ताकि मेरे जो दूसरे श्रोता भी हैं जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट नहीं रहे हैं उन्हें भी ये मालूम हो जाए कि ये सब्जेक्ट मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ये जो मुद्रा बैंक का जो प्रश्न या टॉपिक है कह लीजिए, इसका संबंध कई चीजों से जुड़ता है। जैसे आप इसको मेक इन इंडिया से भी जोड़ सकते हैं, इसको भारत के आर्थिक विकास की गति से भी जोड़ सकते हैं, इसको छोटे मझोले सूक्ष्म उद्योगों के विकास से भी जोड़ सकते हैं और इसके माध्यम से सीधे सीधे हमारे देश की रोजगार की स्थितियों से भी जुड़ जाता है। तो मुद्रा बैंक मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मालूम पड़ता है, तो उसके ऊपर फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के पास एक ऑडियो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग अपना मेल देख लेंगे। और जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको इससे पहले इस पर कुछ, हम लोग जब मुद्रा बैंक की घोषणा की गई थी, सरकार ने जब घोषणा की थी शायद अप्रैल का फर्स्ट वीक था, उस समय कुछ क्लिपिंग्स भी मैंने प्रोवाइड की हैं, इस इशू पर मैंने बहुत डिटेल में बात भी की है। तो बाकी जो स्टूडेंट हैं वो उन क्लिपिंग्स को एक बार फिर से एक्सेस कर सकते हैं, उन बातों को याद कर सकते हैं, और आगे भी यदि उन्हें इस विषय पर कुछ पढ़ने को मिलता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस पर थोड़ा सा वो ध्यान दें। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही जो योजना और कुरुक्षेत्र जो पत्रिकाएं हैं हिंदी और इंग्लिश में जो आपको आर्टिकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आर्टिकल्स भी आपको एज इट इज मिलेंगे। दोस्तों, इसी के साथ ही एक थोड़ी सी इनसे हटकर सूचना है, और वो ये है कि आप लोगों को मालूम है कि कभी कभी बीच बीच में मैं भोपाल में कुछ छोटे मोटे लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम करता रहता हूँ, जिसमें खासकर जो भोपाल के जो स्टूडेंट हैं वो आते भी हैं और उनसे भी मैं एक घंटा का वक्त रखता हूँ बातचीत करने के लिए। पिछली बार एक प्रोग्राम हुआ था प्रकृति की भाषा के ऊपर, जिसकी चर्चा मैंने अपने इस ऑडियो में आप लोगों से की थी, लैंग्वेज ऑफ द नेचर। अब ये जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम यूट्यूब पर डाल दिया गया है, ये आपकी सूचना के लिए है, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हों तो आप यूट्यूब पर ये प्रोग्राम देख सकते हैं, शीर्षक है प्रकृति की भाषा। और ये मैं आपको इसलिए देखने की सलाह देना चाहूँगा क्योंकि हालांकि इसका सीधे कोई भी संबंध आपके सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी से नहीं है, लेकिन चूंकि इसका जो शुरू का मोटिवेशन का पार्ट होता है जिसमें मैं अक्सर क्वांटम फिजिक्स और कुछ दूसरी तरह की बातें करता हूं जो थोड़ी सी आप लोगों को मिस्ट्री सी लगती होंगी, जिसमें रहस्य सा लगता होगा और सच पूछे तो जिस पर थोड़ा यकीन करना भी मुश्किल होता होगा, इस तरह की बातों को समझने में मुझे लगता है कि ये जो लेक्चर है आप लोगों की मदद करेगा। और एक सलाह और भी है और वो ये है, इसे न केवल खुद ही देखें बल्कि अपने पेरेंट्स से भी कहें कि वो इसे देखें और आप उन्हें ये प्रोग्राम दिखाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे उन्हें अपने जीवन को समझने में, जीवन को मैनेज करने में, जीवन को विस्तार देने में शायद कुछ मदद मिल सकेगी। इसका शीर्षक है इस प्रोग्राम का, प्रकृति की भाषा। मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर और वो है मोटिवेशन का। और इसमें हम लोग प्रेम के बारे में बात कर रहे थे, आप लोगों से बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, लेकिन अब मैं समझता हूं कि आज हमें अंतिम रूप से इस पर बात करके इस सब्जेक्ट को विराम दे देना चाहिए। हालांकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह है, आप कितनी भी बातें कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन इसके बाद भी आप लोग अपनी समस्याएं, अपनी बातें मेल के जरिए मुझे बता सकते हैं और उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं उनके जवाब किसी न किसी तरीके से आप लोगों को दूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मित्रों, एक मैं याद फिर से दिलाना चाहूंगा कि मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि आप इस विषय पर बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरी इस पर एक पुस्तक आई है जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही की थी, स्टूडेंट और प्रेम की समझ। यह पूरी तरह से स्टूडेंट की समस्याओं पर केंद्रित है, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर लिखी गई है और मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि यह बहुत ही व्यावहारिक पुस्तक है। आप यदि और भी जानना चाहते हैं इसके बारे में कुछ तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं, बल्कि मुझे तो सच पूछे तो यह लगता है कि जानना ही चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको कोई समस्या नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि यह समस्या है ही नहीं, बल्कि यह तो एक ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल हम सब अपने जीवन के लिए कर सकते हैं और हमें करना ही चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत से लोग कर ही रहे हो, लेकिन हो सकता है कि हम उस अनुपात में, उस मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं जितने मात्रा में, अनुपात में इसकी उसका उपयोग किया जा सकता है। तो हो सकता है कि किताब को पढ़ने के बाद थोड़ी सी उस तरह की कोई दृष्टि मिल सके। और आज के अपने इस ऑडियो के माध्यम से मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस विषय को बहुत अछूता विषय न माने, कोई अस्पृश्य विषय न माने, कोई बहुत ही निषेधात्मक विषय न माने, ये जीवन से जुड़ा हुआ विषय है और अगर बहुत स्वस्थ दृष्टिकोण इसके साथ विकसित की जा सके तो ये शक्ति में तब्दील होती है। और हमारे स्टूडेंट्स जो लगातार, या स्टूडेंट्स यदि नहीं भी हो तो जो युवा लगातार एक विचित्र किस्म के मंथन की प्रक्रिया से अंदर गुजरते रहते हैं, उन्हें कोई बातचीत करने वाला नहीं मिलता, उन्हें कोई राह दिखाने वाला नहीं मिलता, ये किताब हो सकता है कि उनसे बातचीत करने वाली बन जाए और उन्हें राह दिखाने वाली बन जाए। इसलिए थोड़ी सी उदार दृष्टि अपनाएं और स्टूडेंट्स को यदि वो किताब लाते हैं तो इसे ये न समझें कि वो कोई बहुत पथभ्रष्ट करने वाली किताब लेकर आ गए हैं। हालांकि मैं ये बात कह रहा हूं लेकिन मुझे मालूम है कि आज के पेरेंट्स अब इस तरह के सोच वाले नहीं हैं। मित्रों, दो तीन छोटी छोटी बातें मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा क्योंकि वक्त तो बहुत ज्यादा है नहीं। प्रेम के बारे में एक बहुत बड़ी चीज है, नो डाउट मैं कह रहा हूं कि यह बहुत बड़ी एनर्जी है और मेरे पास कुछ मेल भी आए हैं जिन्होंने जानना चाहा है कि हम कैसे इसे सीधे सीधे एनर्जी में बदल सके। तो देखिए, सिंपल सी चीज है कि जब हम इसे सिर्फ अनुभव के स्तर पर लेते हैं तब ये एनर्जी का काम करती है, यदि हमने उसे देह के स्तर पर उतार दिया तो हमारी कमजोरी बनने लगती है। तो सिर्फ इसे आप महसूस कीजिए और दोनों ही स्थितियों में महसूस कीजिए। देखिए, यदि आपको कोई प्रेम कर रहा है, आपसे कोई प्रेम कर रहा है, आपको कोई चाह रहा है, तो ये आपके लिए इस तरह से एनर्जी बन सकती है कि मैं इस लायक हूं कि मुझे कोई चाह रहा है। ये आपकी शक्ति बन जाएगी यदि आप इस तरीके से सोचेंगे तो। और यदि कोई नहीं चाह रहा है तब फिर हमारी सोच ये होनी चाहिए कि अरे मुझे कोई क्यों नहीं चाह रहा है, तो मुझे इस लायक बनना है कि मुझे कोई चाहे। यानी कि एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आपके मन में आनी चाहिए और फिर यानी कि उस इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के चंगुल में फंसकर हम अपनी जिंदगी को उलझा दें, बल्कि उस इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से उबरने के लिए हम कुछ ऐसा करें कि हमारे अंदर की इंफीरियॉरिटी की तुलना में जो हम कर रहे हैं उसका कद कई गुना ज्यादा ऊंचा हो जाए, बड़ा हो जाए। तो फिर जब हम अपनी उस इंफीरियॉरिटी से छुटकारा पाने के लिए कोशिश करेंगे तो यही कोशिश हमें कुछ ना कुछ अच्छा हमसे करा देगी, हमें बड़ा बना देगी और इस तरह से यह एक बार फिर से हमारे लिए शक्ति बनकर आ जाएगी। मित्रों, दोनों ही चीजें हैं, जैसा कि मैंने कहा, मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो मैं समझता हूं कि शायद उससे भी अच्छी बात है। सवाल केवल इस बात का है कि आप उसे लेते किस तरीके से हैं। एक साहित्यकार हुए हैं, शायद टीएस इलियट, या मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, नाम आप कोट न करें, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था, जो मैं इससे पहले एक दो बार बता भी चुका हूं, मैं यहां फिर से उसे दोहराना चाहूंगा, कि आप अपने प्रेम को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, यदि वह आपका है तो वापस आ जाएगा और यदि वह वापस नहीं आया तो वह आपका था ही नहीं। कितनी खूबसूरत बात कही है मित्रों, कि जैसा कि मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि यह अधिकार नहीं है, इस पर आप अधिकार नहीं जता सकते, खुला छोड़ दीजिए। यदि वो आपका है तो लौट कर आएगा ही, उसके लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, वो खुद आएगा। और यदि वो लौट कर नहीं आ रहा था तो फिर अफसोस कैसा, वो आपका था ही नहीं। तो जो चीज आपकी है ही नहीं, आप मुझे बताइए उसके लिए आप कैसे अफसोस कर सकते हैं। जो मकान आपका नहीं है वो ढह गया तो क्या आपको अफसोस होना चाहिए? वैसे एक सामान्य सी बात है तो बात अलग है कि किसी का भी मकान ढह गया, लेकिन आपका तो कुछ नहीं गया ना, आपका तो वो था ही नहीं। दिक्कत ज्यादा यह है कि वो हमारा होता नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि वो हमारा है, और यही सारा का सारा संकट आता है। और हमारे आज के युवाओं की जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है, वो मान लेते हैं कि ये हमारा है, चलिए मान लीजिए, फिर उस पर अधिकार जताते हैं और उस अधिकार में जरा सा भी इमोशनल लेवल पर कुछ इधर उधर होता है तो वो परेशान होने लगते हैं। इन सब बातों की चर्चा मैं आप लोगों से इससे पहले काफी कुछ कर चुका हूं मित्रों, इसीलिए मैं अब इस पर और ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास तो ढेर सारे दूसरे आस्पेक्ट हैं, हम अब उन इश्यूज पर चर्चा करेंगे। आप लोग मुझे बताइए कि आप किन इश्यूज पर और जानना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट आप लोगों ने ही दिया था और मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों से मैं जीवंत सब्जेक्ट लूं बजाय इसके कि मैं अपनी तरफ से सोचकर आप लोगों को सब्जेक्ट उन सब्जेक्ट्स पर बात करूं, तो प्लीज लेट मी नो। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इस प्रेम वाले विषय को यहीं समाप्त करता हूं। मैंने आपको बताया कि आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप किताब ले लें, पढ़ें। मुझे विश्वास है कि आपको आपकी समस्याओं के निदान मिल जाएंगे, और यदि फिर भी बात नहीं बनती है तो आप मुझे मेल करने के लिए स्वतंत्र हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज़ पर। कल के AIR न्यूज़ में कुछ चीज़ें थी जिन पर हम बात कर सकते हैं, और समय हम लोगों को जितना इजाज़त देगा हम उस दायरे में बात करेंगे। दोस्तों, एक खबर थी एयर इंडिया विमान को लेकर के। आपने देखा कि पहले एक विमान जो विदेश जाने वाला था वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कारण देरी से उड़ा, जैसा कि कहा जा रहा है, हालांकि उन्होंने उसका खंडन किया है। और इसके बाद एक विमान जो लेह से आ रहा था वो हमारे गृह राज्य मंत्री जो सेंट्रल में है उनकी वजह से, उसमें से पहले से ही जो तीन यात्री सवार थे उनको उतारा गया और इनको बैठाया गया, और वो भी देरी से उतरा। ये एक घटना है, राइट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सिविल सर्विस में घटनाओं की उतनी उपयोगिता नहीं होती परीक्षा की दृष्टि से, जितनी कि उससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है आप उसको जानिए, उस घटना के पीछे क्या झिलमिला रहा है, कौन से विचार, कौन से भविष्य के संकेत, प्रशासन और राष्ट्रीय चरित्र के कौन से हिस्से उसमें दिखाई दे रहे हैं, हमें उसे पकड़ना पड़ता है। अब ये जो घटना है, ये घटना कहीं ना कहीं हमें एक तरह से भारत में आज भी जो VIP संस्कृति प्रचलित है, एक विशिष्ट संस्कृति जो प्रचलित है, उस तरफ हमारा ध्यान दिला रही है। मुझे नहीं लगता कि सीधे सीधे सिविल सर्विस का क्वेश्चन होगा, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि ये ऐसे का तो विषय बन सकता है, VIP संस्कृति। अगर ऐसे का सीधे सीधे VIP संस्कृति विषय नहीं बनता है या सामंती संस्कृति विषय नहीं बनता है, तो एक ऐसा कंटेंट है, एक ऐसी घटना है जिसका इस्तेमाल आप कहीं इधर उधर कर सकते हैं। यहां तक कि जो जनरल स्टडीज का आपका फोर्थ पेपर इंटीग्रिटी मॉरलिटी का जो पेपर है, आप उसमें भी इस घटना का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केवल संकेत के तौर पर। तो ये ऐसे का एक अच्छा विषय हो सकता है, विशिष्ट संस्कृति या भारतीय समाज में उपस्थित सामंतीय तत्व, इस तरह का निबंध का सब्जेक्ट हो सकता है, सीधे सीधे टाइटल हो सकता है। तो मेरा सजेशन है कि इसको लेकर के आप लोग कोशिश कीजिए कि एक निबंध लिखें, और 1200 शब्दों का एक निबंध लिखने की कोशिश कीजिए। बचिए इस बात से कि उसमें वही चीज बार बार रिपीट ना हो। मित्रों, इसके लिए थोड़ा सा मैं संकेत देना चाहूंगा कि खासकर पूरी दुनिया इससे पहले, डेमोक्रेटिक सेटअप से पहले, एक फ्यूडल कल्चर में रहती थी। फ्यूडल कल्चर में मतलब यही है कि एक राजा है और इसके बाद उसके सामंत हैं, और सामंत और राजा अपने आप को पब्लिक से विशिष्ट समझते हैं। जब ये अपने आप को पब्लिक से विशिष्ट समझते हैं, तो डेफिनेटली विशिष्ट समझने का मतलब है कि हमारे विशिष्ट अधिकार हैं, हम तुमसे अलग हैं, हम तुमसे ऊंचे हैं, और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनके दिमाग में एक ईगो, एक सुपीरियरिटी की भावना आ जाती है, और फिर वो जनता की अवहेलना करते हैं। उनको जनता की कोई परवाह नहीं होती, वो सारे डिसीजंस वो अपने हिसाब से और अपने सुख सुविधाओं के तहत लेते हैं। तो ये एक फ्यूडल कल्चर कहलाता है। तो इस फ्यूडल कल्चर को समझने के बाद आप अब लिखने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे, फिर आप इसको विस्तार दीजिए कि ये जो फ्यूडल कल्चर है, अगर उस समय हम राजा महाराजा और सामंतों की बात ले लें, तो आज उसके पैरेलल आप ले सकते हैं, पॉलिटिशियंस को ले सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स को ले सकते हैं, आप समाज के और भी जो विशिष्ट वर्ग के जो लोग होते हैं, यहां तक कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ले सकते हैं। तो कहां कहां आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है, किन रूपों में आपको देखने को मिलती है, यहां तक कि अब तो आप धार्मिक तंत्र के लोगों को भी इस VIP संस्कृति के का ही जीवन जीता हुआ आप देख सकते हैं। कुंभ मेले में आप चले जाइए, अभी इलाहाबाद आपके उज्जैन में अगले साल लगने वाला, देखिए कि करोड़ों रुपए के टेंट लगे रहते हैं, और किस तरह से वो जो धार्मिक गुरु हैं बिल्कुल VIP की तरह चलते हैं, रहते हैं, उसी तरह का जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह की ढेर सारी चीजों को अलग अलग वर्गों से जुटा करके, और फिर आप उस कच्चे माल से एक ऐसे की खूबसूरत इमारत खड़ी करने की कोशिश कीजिए। मित्रों, जो दूसरी खबर थी, इंपॉर्टेंट खबर मुझे लगी, और ये नई बात भी है कि कैबिनेट ने जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसको पारित कर दिया है, और ये एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। और ये तो सच पूछे तो आजादी के प्रथम पंचवर्षीय योजना या जब द्वितीय पंचवर्षीय हमारी योजना बन रही थी, तभी इस तरह की योजना पारित हो जानी चाहिए थी। आप देख रहे हैं कि स्पेशली 1995-96 के बाद, खासकर इस तरह की चीजों की शुरुआत, मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, तब इस तरह की शुरुआत होनी ज्यादा शुरू हुई। प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू हुई और हेल्थ से संबंधित योजना शुरू हुई, योजनाएं पहले भी शुरू होती थी, लेकिन वो नए पैटर्न पर एक बहुत ही व्यापक रूप में, और न केवल व्यापक रूप में ही बल्कि बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आप जानते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। सामान्य जीवन तो बदला ही है, वहां के आर्थिक तंत्र में भी बहुत ज्यादा सुधार आया है सड़कों के कारण। ठीक इसी तरह से अब आ रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। भारत यदि कृषि प्रधान देश है और आज हमारी 58% पॉपुलेशन अभी भी कृषि पर निर्भर है, और मजेदार बात है कि हमारी कृषि 60% मानसून पर निर्भर है, तो ऐसी स्थिति में यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था सिंचाई योजना को लेकर के। तो एक क्रिटिकल एनालिसिस आपको इन चीजों को लेकर के दिखाई दे रही है, और आप लोगों को ध्यान होगा, खासकर जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट हैं, कि भारतीय कृषि व्यवस्था के सिनेरियो पर मैंने आप लोगों को कई कई स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किए हैं। एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप में कृषि की बात मैंने की है, फिर भारतीय कृषि व्यवस्था पर ही मैंने अलग से एक ऑडियो आपको प्रोवाइड किया है, फिर हरित क्रांति की बातें हम लोगों ने की हैं। तो उन सब के आधार उनको एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि फिर से सुने और फिर उसको इससे जोड़ करके समझने की कोशिश करें और इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करें। कुछ चीजें अभी सामने आएंगी, क्योंकि अभी तो केवल मंत्रिमंडल ने पारित किया है, देखिए कि अब क्या होता है। याद रखें कि अगर मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया है तो अब ये लागू ही हो जाएगी, क्योंकि इसे संसद में ले जाने की जरूरत नहीं है, ये कोई कानून नहीं बन रहा, ये तो एक योजना सी है, तो सरकार की योजना है, वो चीजें सामने आएंगी। अभी न्यूज में हमने जो सुना है उसमें थोड़ी सी बातें उन्होंने बताई है कि पहले तो यह है कि प्रत्येक गांव में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, हर एक गांव में सिंचाई की सुविधा होगी, जो वहां की रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह के वहां प्राकृतिक संसाधन होंगे, कहीं नदी है तो नदी को आधार बनाया जाएगा, अगर कहीं कुएं की जरूरत होगी तो कुएं से सिंचाई के साधन होंगे, या ट्यूबवेल होंगे, या नहर के माध्यम से होगा, जैसा भी होगा उस तरीके से सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और कोशिश ये है, जो नारा है, कि देश के हर खेत को सिंचाई से जोड़ा जाए, और जिस दिन ये हो जाएगा आप मान करके चलिए कि भारत में एक बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति घटित हो जाएगी। मित्रों, इस पर 5 वर्ष के दौरान 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अभी प्लान किया गया है, ये आंकड़ा आपको मालूम होने चाहिए। इसलिए मित्रों, कि इस तरह की जो बातें होती हैं ये इसको प्रूफ करती हैं कि नई विषय पर आपकी पकड़ अच्छी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अपने दिमाग में आप बहुत ज्यादा आंकड़ों का जाल मत बिछाइए, सभी को कुछ याद करने की कोशिश मत कीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस उनको ध्यान में रखिए और उनका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, आपके लिए उतनी ही चीजें सफिशियंट होंगी। दोस्तों, एक छोटी सी खबर इस बात की भी थी कि सरकार कौशल विकास नीति बनाने जा रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाने जा रही है। यह केवल एक सूचना भर मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए कि जब यह नीति आएगी आप देखेंगे इस पर डिस्कशन भी होगा, सरकार आपसे राय भी मांगेगी। तो मैं समझता हूं कि चूंकि स्किल डेवलपमेंट भारत का एक बहुत बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी योजना है, और नो डाउट कि जब तक हम अपने यहां के लोगों को स्किल्ड नहीं करेंगे तब तक उनकी आय नहीं बढ़ेगी, और जब तक आय नहीं बढ़ेगी तब तक डेफिनेटली उनका आर्थिक स्तर नहीं बढ़ सकता है। और तब जबकि हम बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग हब की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसे समय में तो स्वाभाविक रूप से हमको स्किल्ड लेबर की सबसे ज्यादा जरूरत है, स्किल्ड युवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, केवल लेबर ही नहीं बल्कि स्किल्ड हर तरह में, हर काम में स्किल्ड चाहिए। तो ऐसे समय में जो कौशल विकास नीति जो बन रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि किस तरह से देश के जो 21 मंत्रालय हैं उन सबके पास अपनी अपनी योजनाएं हैं, और वो अपने अपने मंत्रालय के विषय के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में वो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड्स, इसके बाद एक न्यूज थी, खासकर हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर के स्टेटमेंट को लेकर। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मित्रों, आप लोगों को ध्यान है या नहीं, लेकिन जब रघुराजन जी रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाए गए थे उस समय ये बात आई थी, और मैंने अपने ऑडियो में भी इसका विशेष रूप से उल्लेख किया था कि हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ही सन 2002 या 2003 के आसपास इस बात की घोषणा की थी कि 2008 में अमेरिका में रिसेशन आ सकता है, मंदी आ सकती है, और सच में यही हुआ, उस मंदी आई। तो वो उसने उनको बहुत पॉपुलर बनाया और अभी उन्होंने फिर से विश्व मंदी की बात कही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वो वेल नोन अर्थशास्त्री ही नहीं है बल्कि बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। वो जो कहते हैं उसका एक वजन होता है और वजन केवल भारत के संदर्भ में नहीं बल्कि विश्व के संदर्भ में भी होता है। और अभी जो उन्होंने कहा है कि फिर से विश्व मंदी का खतरा है वो कोई आसान बात नहीं है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि हमारे गवर्नर साहब की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सरकार अपनी तरफ से अपनी रिक्वायरमेंट बताती रहती है कि ब्याज दरें घटाई जाए और फलाना किया जाए, लेकिन रिजर्व बैंक के जो हमारे गवर्नर हैं रघुराजन जो बिल्कुल इस बात को लेकर के चलते हैं रघुरामन जी की नहीं, जो होना है वही होगा। इसके जो मूल कारक होंगे वो आर्थिक होंगे, राजनीतिक या दूसरे कारक नहीं, और इसके लिए भी इनकी बहुत तारीफ होती है। तो इसीलिए जब भी आपको रिजर्व बैंक के गवर्नर का कुछ स्टेटमेंट सुनने को मिलता है, चाहे वो न्यूज में हो या अखबार में बहुत प्रोमिनेंटली अगर लिखा गया है, लोगों ने हाईलाइट किया है, तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। न्यूज में तीन बातें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही थी। पहला तो उन्होंने कहा था कि भारत में जो रिफॉर्म प्रोजेक्ट होने चाहिए थे, जो सुधार होने चाहिए थे, वो अभी तक नहीं हुए हैं, उन्हें होना चाहिए। सुधार के बारे में आप जानते हैं, सबसे बड़ा तो लेबर लॉ को ही लेकर की बात होती है कि हमारे श्रम कानूनों में सुधार किया जाए। भूमि अधिग्रहण कानून आप देख रहे हैं कि वो अभी लटका हुआ, वो अभी पारित नहीं हो सका है। तो एक सुधार कार्यक्रमों के बारे में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक है लेकिन इसको गति देने के लिए पहली बात सुधार कार्यक्रम हमारे यहाँ लागू होने चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो रुकी हुई योजनाएं हैं वो शुरू होनी चाहिए। भारत का बहुत सा पैसा प्रोजेक्ट्स में रुका हुआ है। कल या परसों ही मैं किसी अखबार में पढ़ा था कि 60,000 करोड़ रुपए इस तरह के प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं। कंपनी बैंक से पैसा लेती है, प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है, अब न तो प्रोजेक्ट पूरा होगा न उससे कमाई होगी, तो कंपनियों को कमाई नहीं होगी, जब कंपनियों को कमाई नहीं होगी तो ये पैसा बैंक को नहीं लौटाएंगे, तो फिर पता लगा कि बैंक दिवालिए हो रहे हैं, बैंकों की हालत खराब हो रही है, जो लगभग हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं। इसे एक दो दिन पहले मैंने आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड किए कि किस तरह से बैंक में जो नॉन पेमेंट जो एसेट बढ़ रहे हैं 13-14% तक हो गए हैं, डूबत खाता जिसको हम बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं। तो ये एक पूरा का पूरा साइकिल जुड़ा हुआ होता है, तो रुकी हुई योजनाओं को शुरू किया जाना चाहिए। और फिर उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही कि ग्रीस संकट का भारत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा व्यापार उनके साथ उतना अधिक नहीं है, बहुत थोड़ा सा व्यापार ग्रीस के साथ है। ये तीन बातें उन्होंने कही हैं, तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। मित्रों, आज मैं दैनिक भास्कर का आपको एक बहुत अच्छा आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं और वो है मंदी के ऊपर, जो 1929 में अमेरिका में मंदी आया था, उसको मैंने अंडरलाइन भी किया है। उसमें आप देखेंगे कि जब मंदी का दौर आता है, बहुत अच्छे से समझाया कि मंदी की डेफिनेशन क्या है, फिर जब मंदी की दौर की शुरुआत होती है तो फिर लोग क्या करते हैं, सरकारें क्या करती हैं, और वो जितना कुछ भी करती हैं तो पता लगता है कि वो उसी में उलझते चले जा रहे हैं, लगातार उलझते चले जा रहे हैं, बजाय इसकी कि उससे निकल सकें और उलझते चले जा रहे हैं, फिर एक देश फिर दूसरे देश और फिर पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ जाती है। तो हालांकि वो आर्टिकल मंदी के ऊपर ही है लेकिन वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को भी समझने में आपकी बहुत मदद करेगी। वो बहुत अच्छा आर्टिकल है और उसे आप सब बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा और हो सके तो अपने पास रख भी लीजिएगा। मित्रों, एक खबर महाराष्ट्र के बारे में है कि महाराष्ट्र में जो मदरसे हैं, सरकार ने कहा है कि यदि उसमें मॉडर्न एजुकेशन जिसमें गणित है और इंग्लिश है इन सब की अगर पढ़ाई नहीं हुई तो उनकी मान्यता रद्द वो सरकार करेगी। बहुत से मदरसों ने, लगभग 1800-1900 मदरसे हैं, जिस न्यूज़ में ये भी बात थी कि 500 मदरसों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इस तरह की आधुनिक शिक्षा वहाँ देंगे। बाकी के बारे में अब एक विवाद की स्थिति आएगी क्योंकि ये अल्पसंख्यक का मामला है और वहाँ एक अलग तरह की एजुकेशन दी जाती है जो उनकी अपनी संस्कृति अपने धर्म इससे संबंधित है। तो ये भी मैं केवल एक आपको बीज के रूप में बता रहा हूँ। निश्चित रूप से इस पर विवाद होंगे, एडिटोरियल आर्ट कमेंट्स भी आएंगे, आर्टिकल्स भी आएंगे, तो हम देखते हैं कि ये क्या रूप लेता है और जिस तरह का ये रूप लेगा उसी के आधार पर फिर हम आगे इसकी चर्चा करेंगे सिविल सर्विस के दृष्टि से। और अंतिम खबर बस केवल ये है मित्रों कि आकाशवाणी से जो कंट्री वाइड प्रोग्राम है उसमें डिजिटल इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बातचीत होगी, तो ये अगर संभव हो तो आप लोग जरूर सुनिएगा क्योंकि वो सरकारी दृष्टिकोण से आपको चीज़ें बता सकेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा सामग्री उसमें उपलब्ध होंगे। मित्रों, जहां तक न्यूज क्लिपिंग्स की बात है, अब मैं न्यूज क्लिपिंग्स पर बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत आराम से आप लोग समझ लेंगे। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस क्लिपिंग्स में एक इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल कमेंट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो क्यूबा है, अमेरिका के पास देखेंगे आपके, क्यूबा छोटा सा देश है जहां जो कम्युनिस्ट कंट्री था, बेसिकली फिदेल कास्ट्रो उसके बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे, कि क्यूबा को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो एचआईवी से जो बच्चों में संक्रमित होता था, जो मदर टू बेबी जो ट्रांसमिशन होता था एचआईवी, उसको पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा गौरव क्यूबा को मिला है और क्यूबा दुनिया का पहला ऐसा देश है। तो ये क्यूबा नाम आप ध्यान रखिएगा, कहीं कोट करने में आपको इससे मदद मिलेगी। दोस्तों, तो अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर और वो है मेल का चरण। बहुत से मेल हैं, कुछ के तो मुझे सीधे सीधे ही जवाब देने हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, नचिकेता वत्स गया से मेल आया है और अभी वो कॉलेज के स्टूडेंट हैं। नचिकेता, तुमने जो AFEIS क्लब के बारे में जो बताया है, मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि तुम लोग की जो टीम है, जो स्टूडेंट तुम लोग का जो ग्रुप है, इस काम को आगे बढ़ा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इस काम को आगे बढ़ाते रहो, देखते हैं कि आगे हम इसको और क्या रूप दे सकते हैं। इसके लिए तुमको और तुम्हारी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। मित्र, कुछ और मेल हैं। BS अमीना का है जयपुर से, जो तुमने भेजा है BS वो बिल्कुल ठीक है, बस उसको बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े उसमें मत ले जाना, क्योंकि अभी जो प्राइम मिनिस्टर की यात्रा हो रही है वो छोटे छोटे देश हैं, हालांकि मध्य एशिया के देश हैं, और हमारे प्रधानमंत्री की अभी योजना नीति भी कुछ ऐसी है कि हम छोटे देशों को भी अपने साथ जोड़ें, लेकिन बहुत विस्तार में मत चले जाना, बस मैं ये केवल बताना चाहूँगा। रजत का है बोलपुर से, बिल्कुल सही रजत तुमने पकड़ा है, जो भक्ति और सूफी संतों का जो तुमने पॉइंट पकड़ा है, जो क्लू पकड़ लिया है उस आंसर को लिखने का, यू आर गोइंग इन अ वेरी वेरी राइट डायरेक्शन, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रिया रावत का है गाजियाबाद से, प्रिया अगर अभी 2 महीने का वक्त है, तैयारी करके देखो, यदि तुमको लगता है कि मेंस क्वालिफाई करने का कॉन्फिडेंस आ रहा है तो तभी प्री में बैठना, अदरवाइज मत बैठना। लेकिन अभी मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कि तुम्हारी अभी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए शायद ऐसा सोच रही हो कि मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगस्त लास्ट में प्री के एग्जाम होंगे, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 पूरे महीने तुमको ऑप्शनल के लिए तैयारी के लिए मिलेंगे, और इस बीच में अगर तुम्हारी जनरल स्टडीज पर कमांड है तो मेंस पर भी तुम कमांड कर लोगी, इसलिए अभी कोई डिसीजन मत लो, अभी वक्त बाकी है, तबीयत ठीक हो जाने दो, बी बोल्ड, अपने को शक्तिशाली बनाओ, मानसिक शक्ति पैदा करो, जल्दी से स्वस्थ होकर के तैयारी में लगो, इसके बाद फिर डिसीजन लेना, अभी कोई डिसीजन मत लो। सुनीता पाटीदार ने मीडियम के बारे में पूछा है। सुनीता, जो हमारी अभी तक की जो मीडियम, मैं समझता हूँ कि जो हमारा मीडियम रहा हिंदी या इंग्लिश, उसी को ही सिविल सर्विस के लिए लेकर के चलना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम मीडियम बिल्कुल शिफ्ट करते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इससे बहुत दिक्कत होती है, इसलिए और कभी ये मन में मत लाओ कि इंग्लिश मीडियम से नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मीडियम कोई भी हो, अगर आपके लिखने में दम है तो आपको नंबर मिलेंगे और आप सेलेक्ट भी होंगे। पूजा माथुर ने जयपुर से जानना चाहा कि केवल 2 अटेम्प्ट हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। तो पूजा, इसके बारे में मैं कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, ये हमारी अपनी अपनी क्षमताओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन ये जरूर है कि 2 अटेम्प्ट कम नहीं होते, 2 अटेम्प्ट में सफलता हासिल की जा सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्हीं में से एक मैं हूँ जिसने 2nd अटेम्प्ट में सफलता हासिल की थी, लेकिन आपकी अपनी क्षमता क्या है, बैकग्राउंड क्या है, अंदर उत्साह कितनी है, एनर्जी कितनी है, परिस्थितियां क्या हैं, अभी तक की तैयारी क्या है, ढेर सारी बातों पर ये चीज़ें निर्भर करती हैं। एक है अविलास मिश्रा, जिन्होंने जानना चाहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या करें, आई सिविल सर्विस में लेना चाह रहे हैं और इग्नू से वो क्या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें। बिल्कुल अविलास कर लेना चाहिए, क्योंकि इग्नू के जो नोट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो बहुत अच्छे हैं और खाली बैठने का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा होगा कि इसी दौरान तैयारी भी हो जाएगी और एक डिग्री भी मिल जाएगी। मित्रों, इसी के साथ अब गौरव कुमार शुक्ला का ने अपना मोबाइल नंबर दिया है, जो अक्टूबर की क्लास में आ रहे हैं, जो सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि जो यहां से आ रहे हैं वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गौरव कुमार शुक्ला का मोबाइल नंबर है 7376616767। तो मित्रों, अब मैं उन सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं जिन्होंने मेल लिखे हैं, और इन्हीं में से कुछ के नाम मैं लेना चाहूंगा। और उनके नाम हैं, एक है सुनैना जायसवाल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, सार्थक शुक्ल रायपुर आप भी छत्तीसगढ़ से, नंद किशोर सेन करौली से, अभिषेक दास आसनसोल पश्चिम बंगाल से, सागर लखनऊ से, राज गौरव, कौशल चौहान, रोहित गोयल और कन्हैया दुबे, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं आज के ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करता हूं और 2 दिन के लिए इजाजत चाहता हूं। सोमवार को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक शनिवार के लिए ढेर सारी सामग्रियां आपको नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल रहेंगी, उनका भरपूर फायदा उठाएं। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।